नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मेलानी सैंडर्स की द ऑफिशियल वी डू नॉट केयर क्लब हैंडबुक पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज और उसके बाद के दौर से गुजर रही महिलाओं के लिए हास्य, आत्मस्वीकृति और व्यावहारिक सहारे को मिलाने वाली पुस्तक है। यह पारंपरिक चिकित्सकीय मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि एक समुदाय केंद्रित हैंडबुक है, जिसका उद्देश्य हार्मोनल बदलावों, शरीर में परिवर्तन, भूलने की प्रवृत्ति, नींद की परेशानी, चिड़चिड़ाहट और सामाजिक दबावों से जूझती पाठिकाओं को पहचान और भाषा देना है। सैंडर्स के व्यापक वी डू नॉट केयर क्लब आंदोलन से निकली यह पुस्तक उस भावना को व्यवस्थित रूप देती है कि हर अपेक्षा को पूरा करना आवश्यक नहीं है। इसकी शैली बातचीत जैसी सीधी और डेडपैन हास्य से भरी है। व्यक्तिगत अनुभवों, सामुदायिक टिप्पणियों, सूची आधारित हास्य, संसाधनों और अभ्यासों के माध्यम से पुस्तक महिलाओं को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करने के लिए प्रेरित करती है। इसका केंद्रीय विचार लापरवाही नहीं, बल्कि निरर्थक परफेक्शनिज्म, लोगों को खुश करने की आदत और उम्र से जुड़ी शर्म से दूरी बनाना है। इस प्रकार पुस्तक मेनोपॉज को केवल निजी स्वास्थ्य समस्या नहीं, साझा सामाजिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वी डू नॉट केयर का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, अनावश्यक अपेक्षाओं को छोड़ना है। पुस्तक का सबसे पहचानने योग्य विचार वी डू नॉट केयर मंत्र है। सतह पर यह वाक्य ब्रा न पहनने, पैरों के बाल न हटाने, दिन भर पजामा पहनने, देर से पहुंचने या रद्द हुई योजनाओं पर दुखी न होने जैसी बातों के माध्यम से सामने आता है। लेकिन इसका वास्तविक काम सामाजिक अनुशासन पर सवाल उठाना है। मध्यायु की महिलाओं से अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि वे सजी संवरी, उपलब्ध, विनम्र, समयनिष्ठ और परिवार के लिए लगातार सक्षम बनी रहें, चाहे वे शारीरिक या भावनात्मक रूप से कैसा भी महसूस कर रही हों। सैंडर्स इन छोटी दिखने वाली अपेक्षाओं को सूची के रूप में रखकर दिखाती हैं कि इनका संचयी बोझ कितना भारी हो सकता है। हास्य यहाँ प्रतिरोध की भाषा बनता है। यह पाठिका को अपनी थकान या असुविधा को निजी असफलता मानने के बजाय एक वैध अनुभव मानने में मदद करता है। पुस्तक यह अंतर भी महत्वपूर्ण बनाती है कि किन बातों को छोड़ना सुरक्षित और उपयोगी है और किन स्वास्थ्य, संबंध या व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर ध्यान देना अब भी जरूरी है। इसलिए इसका संदेश उदासीनता का समर्थन नहीं करता। इसका केंद्र विवेकपूर्ण चयन है, यानी ऊर्जा को बाहरी स्वीकृति से हटाकर आराम, गरिमा, स्वास्थ्य और वास्तविक प्राथमिकताओं पर लगाना। दूसरा, मेनोपॉज के अनुभव को शर्म और अकेलेपन से निकालकर सामुदायिक पहचान में बदलना सैंडर्स की हैंडबुक की शक्ति केवल लेखक के अनुभव में नहीं, बल्कि वी डू नॉट केयर क्लब की सामुदायिक पहचान में है। पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज के लक्षण अक्सर निजी बातचीत तक सीमित रह जाते हैं, जबकि उनका असर काम, परिवार, मित्रता, आत्म छवि और रोजमर्रा के निर्णयों पर पड़ सकता है। रात में पसीना आना, दिमागी धुंध, अचानक चिड़चिड़ापन, तापमान के प्रति असहजता और शरीर में बदलाव जैसे अनुभवों को पुस्तक सामान्य भाषा में सामने लाती है। इससे पाठिका को यह संकेत मिलता है कि वह अकेली, अतिरंजित या कमजोर नहीं है। क्लब का विचार सदस्यता, साझा वाक्यांशों और सामूहिक सूचियों के जरिए एक अनौपचारिक समर्थन तंत्र बनाता है। यह ढांचा विशेष रूप से इसलिए असरदार है क्योंकि यह सलाह देने से पहले अनुभव को मान्यता देता है। किसी समस्या का तत्काल समाधान न भी हो, तब भी उसे बिना शर्म कह पाना राहत दे सकता है। पुस्तक की समुदाय भाषा बहनापा रचती है, पर उसका उद्देश्य एक जैसा अनुभव थोपना नहीं है। अलग अलग महिलाओं के लक्षण, स्वास्थ्य स्थितियां और पारिवारिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, फिर भी साझा मंच यह समझने में मदद करता है कि व्यक्तिगत संघर्षों के पीछे उम्रवाद, सौंदर्य मानक और देखभाल की असमान अपेक्षाएं जैसे व्यापक दबाव भी काम कर सकते हैं। तीसरा, हास्य कठिन शारीरिक और भावनात्मक बदलावों को कहने योग्य बनाता है। इस पुस्तक में हास्य सजावटी तत्व नहीं, बल्कि संप्रेषण की मूल रणनीति है। मेनोपॉज से जुड़ी बातचीत अक्सर या तो अत्यधिक चिकित्सकीय हो जाती है या पूरी तरह हल्की कहकर टाल दी जाती है। सैंडर्स इन दोनों सीमाओं के बीच एक तीसरा रास्ता बनाती हैं। वे अव्यवस्थित कपड़ों, बेमेल मोजों, चिन के बालों, पढ़ने के चश्मे खोने और किसी के थर्मोस्टेट छूने पर झुंझलाहट जैसी स्थितियों को अतिरंजित नहीं, बल्कि पहचानने योग्य दैनिक दृश्यों की तरह इस्तेमाल करती हैं। इससे असुविधाजनक विषयों पर बात शुरू करना आसान होता है। पाठिका पहले हंस सकती है, फिर अपने अनुभव पर विचार कर सकती है। यह क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि हास्य रक्षात्मकता और आत्मदोष को कम कर सकता है। साथ ही पुस्तक का डेडपैन अंदाज उस सांस्कृतिक आदत का विरोध करता है जिसमें महिलाओं की परेशानी को या तो नाटकीय या तुच्छ बताया जाता है। यहाँ हंसी अनुभव को छोटा नहीं करती, बल्कि उसे साझा करने लायक बनाती है। फिर भी पुस्तक का यह स्वर उन पाठिकाओं के लिए सीमित हो सकता है जिन्हें गंभीर लक्षणों के लिए विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी चाहिए। ऐसी जरूरतों में हास्यपूर्ण हैंडबुक उपयोगी भावनात्मक सहचर हो सकती है, पर पेशेवर स्वास्थ्य सलाह का विकल्प नहीं। यही सीमा इसकी विधा और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। चौथा, सुपरवुमन की भूमिका छोड़कर बदलती प्राथमिकताओं और रिश्तों पर पुनर्विचार। पुस्तक का एक व्यावहारिक पक्ष यह है कि वह मध्य आयु को पहचान और भूमिकाओं की समीक्षा का समय मानती है। सैंडर्स उस आदत पर प्रश्न उठाती हैं जिसमें महिलाएं हर काम संभालने, सबकी जरूरत पहले रखने और लगातार सक्षम दिखने को अपनी कीमत से जोड़ देती हैं। इस दबाव को वे सुपरवुमन केप की छवि से संबोधित करती हैं। केप उतारने का अर्थ महत्वाकांक्षा या देखभाल छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि शरीर, ऊर्जा और भावनात्मक क्षमता बदलने पर पुराने मानक हमेशा टिकाऊ नहीं रहते। पुस्तक में आत्म देखभाल, ईमानदारी और नई आदतों की बात इसी संदर्भ में आती है। मूड में बदलाव, शरीर के प्रति असंतोष या कम होती सहन शक्ति रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी सीमाएं स्पष्ट करना उपयोगी बनता है। पाठिका यह सोच सकती है कि किन निमंत्रणों, घरेलू मानकों, सौंदर्य नियमों या लोगों को खुश करने वाले व्यवहारों को कम किया जा सकता है। यह दृष्टि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जिम्मेदार संवाद से जोड़ती है। पुस्तक किसी एक सही जीवन शैली का आदेश नहीं देती, बल्कि यह अनुमति देती है कि महिला अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएं चुने। इस तरह बदलाव को केवल हानि या अव्यवस्था न मानकर पुनर्संतुलन के अवसर की तरह देखा जाता है। अंत में छोटी उपयोगी हैंडबुक के रूप में संसाधन, अभ्यास और क्लब प्रतीक, द ऑफिशियल वी डू नॉट केयर क्लब हैंडबुक का रूप भी उसके उद्देश्य से जुड़ा है। यह केवल संस्मरण या विचार पुस्तक नहीं है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार इसमें पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज संबंधी जानकारी, उपयोगी संसाधन, चिंतन या अभ्यास, निजी प्रसंग और हास्य सामग्री एक साथ रखी गई है। यह मिश्रित संरचना पाठिका को अलग अलग जरूरतों के लिए अलग प्रवेश बिंदु देती है। किसी दिन उसे अपने अनुभव का नाम चाहिए, किसी दिन हल्की हंसी और किसी दिन आगे की सहायता खोजने का संकेत। पुस्तक में सदस्यता कार्ड और काट कर इस्तेमाल किए जा सकने वाले पैच जैसे क्लब प्रतीक भी शामिल बताए गए हैं। ये वस्तुएं गंभीर उपचार उपकरण नहीं है, लेकिन इनका सांस्कृतिक काम स्पष्ट है। वे पाठिका को एक साझा पहचान का स्पर्शनीय संकेत देते हैं और पुस्तक को निष्क्रिय पठन से कुछ अधिक सहभागितापूर्ण बनाते हैं। छोटे आकार और हैंडबुक जैसी प्रस्तुति का लाभ यह है कि इसे क्रम से पढ़ने की बाध्यता कम होती है। पाठिका किसी प्रासंगिक हिस्से पर लौट सकती है। इसकी सीमा भी यही है कि व्यापक निदान, दवा विकल्प, जोखिम या उपचार निर्णयों के लिए इसे पर्याप्त संदर्भ नहीं माना जाना चाहिए। इसकी सर्वोत्तम भूमिका चिकित्सा जानकारी के स्थान पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय स्वास्थ्य परामर्श के साथ भावनात्मक, भाषाई और सामुदायिक समर्थन जोड़ने में है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त है जो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज के दौरान स्वयं को थका हुआ, चिड़चिड़ा, बदला हुआ या सामाजिक अपेक्षाओं से घिरा महसूस करती हैं। यह उन पाठिकाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है जो किसी निकट महिला के अनुभव को अधिक संवेदनशीलता से समझना चाहती है। इसका व्यावहारिक लाभ किसी जटिल उपचार योजना में नहीं, बल्कि अनुभव को नाम देने, शर्म घटाने और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने में है। पुस्तक पाठिका को यह भाषा देती है कि वह बिना अपराध बोध के कह सके कि हर सामाजिक नियम, हर निमंत्रण और हर सौंदर्य अपेक्षा उसकी ऊर्जा के योग्य नहीं है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशेषता इसका क्लब आधारित स्वर, संक्षिप्त हास्यपूर्ण सूची शैली और सोशल मीडिया से जन्मी सामूहिक पहचान है। जहां कई मेनोपॉज पुस्तकें मुख्यतः हार्मोन, लक्षण और चिकित्सा विकल्पों पर केंद्रित रहती हैं, वहां सैंडर्स का जोर रोजमर्रा की झुंझलाहट, आत्म छवि और लोगों को खुश करने की थकान पर है। यही इसे भावनात्मक रूप से अलग बनाता है। हालांकि जो पाठक हार्मोन थेरेपी, निदान या गंभीर लक्षणों के विस्तृत प्रमाण आधारित मार्गदर्शन की तलाश में है, उन्हें इसे चिकित्सक और विश्वसनीय चिकित्सा स्रोतों के पूरक के रूप में ही पढ़ना चाहिए। अंततः यह हैंडबुक मेनोपॉज को गरिमा खोने का चरण नहीं, बल्कि अपने समय, शरीर और सीमाओं के बारे में अधिक ईमानदार होने का दौर मानती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मेलानी सैंडर्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।